राम राम हरे हरे। तो आज श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री राधा राधिका रमन श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ठाकुर जी के चरणों में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पंजाबी बाग मंदिर में श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पांचवें अध्याय के ऊपर प्रवचन सुना। प्रवचन में गुरु शिष्य को शिक्षा दे रहे थे, नारद जी व्यासदेव को शिक्षा दे रहे थे। जब व्यासदेव समस्या में घिर गया था, अच्छा काम करते हुए भी, वेदों का विस्तार करते हुए भी, शास्त्र और पुराण लिखते हुए भी, पूजा पाठ करते हुए भी, बद्रीनाथ आश्रम में रहते हुए भी, सरस्वती में स्नान करते हुए भी परेशान था। इसका मतलब है मंदिर में रहते हुए भी हम परेशान हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि परेशानी यहाँ नहीं आएगी। तो ये था शुरुआत। और इसका उत्तर क्या दिया नारद जी ने, आप कुछ भी करो उससे अगर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए तो आपका काम सफल, और वो संतुष्ट नहीं हो तो बाकी सारा आपका काम बेकार। तो ये दिया उत्तर, और ये उत्तर देके फिर ये बताया कि इस दुनिया में धार्मिक लोग हैं, वो पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं है, अथवा उसके बारे में जानते ही नहीं है। और तब उन्होंने पहले तो शिक्षा हमको देनी चाहिए कि प्रचार कैसे करना चाहिए, और प्रचार करने के लिए उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती के चैतन्य चंद्रिका से एक श्लोक के ऊपर पूरा प्रवचन दिया। कर्मी लोग क्यों पूजा करते हैं, क्यों रोज चौकी करते हैं, क्यों पाठ करते हैं, क्यों जागरण करते हैं, यहाँ सुख मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे। और ये कैसा है, घोड़े के अंडे। प्रभुपाद ने कहा घोड़े के अंडे, घोड़े का अंडे होते नहीं है तो वहां जाएंगे तो करेंगे क्या, वापस यहां लौट के आएंगे, तो ऐसी जगह जाने का जरूरत क्या। आकाश में पुष्प होते नहीं, घोड़े के अंडे होते नहीं, गधे के सिंह होते नहीं, और ये गधे बनते जाते हैं, गधे जैसा काम करते हैं और गधे के सिंह होते नहीं। और फिर कह दिया ज्ञानी, ये कहते हैं भगवान से मिलकर एक हो जाएंगे, ये तो केवल नरकाय है, करोगे क्या उधर, जहां कुछ भी करने के लिए नहीं हो वहां जाके क्या करोगे। इसलिए उनका लक्ष्य भी अपने आप को संकट में डालना है। अब तीसरा योगी, क्या करते हैं योगी, गाड़ी नंबर 3816 उसकी चाबी हमको दे दी जाए अपनी जगह से हटाकर, अगर आपकी गाड़ी है तो वहां से हटा लो, नहीं तो हम दान में उसको ले लेते हैं मंदिर में। किसकी है भैया, 3816 है किसी की, नहीं ले ले मंदिर के ट्रेजरी में। हरे कृष्णा, 3816 वाले भाई। योगी क्या करते हैं, इंद्रियों को रोकने का प्रयास करते हैं, बहुत दबा के रोकते हैं, जैसे टोकरी में सांप को दबा के रखते हैं, बाहर निकलेगा तो फिर ऐसे ऊपर उठा लेगा। तो सारी उम्र तो टोकरी में रह नहीं सकता योगी भी, सारी उम्र तो समाधि में रह नहीं सकता। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा है कि समाधि में हो या बाहर हो, हर वक्त आपको कैसे याद करें। सो अविकल्पे न योगे न, दसवें अध्याय का ये प्रश्न है, और दसवें अध्याय का प्रभुपाद ने उल्लेख किया है इसमें कि हम तो किसी को भी सम्मान मान इसलिए देते हैं कि उसको ये पद कृष्ण की कृपा से मिला है, उसका अंश उसमें है, उसकी उसके अंदर विभूति है, इसलिए उसको पूजते हैं। तो ये सर्प जैसी इंद्रियां विषीली होती हैं, उनके लिए जिनको दांतों को सर्प के दांत को तोड़ना नहीं आता, लेकिन जो भगवान की सेवा में लग जाता है उसके लिए फिर कुछ करने को जरूरी नहीं है। बड़ा आश्चर्य लगता है, प्रभुपाद ने पहले तो कहा प्रचार निम्रता से करना चाहिए, दांत के बीच में तिनका डालकर, चरणों में गिर कर, और 100 बार उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और फिर दूसरे पक्ष में प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की बात कह रहे हैं इसलिए बड़े से बड़े आदमी को गधा कह सकते हैं। एकदम कि हमको बहुत निम्रता से प्रचार करना चाहिए, लेकिन जहां गधे को गधा कहना ना चाहिए वहां उसमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बड़ा आश्चर्य लगता है, दोनों चीजें एक ही वक्त में है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी कही श्रील प्रभुपाद की जय, एक बात बड़ी अच्छी कही श्रील प्रभुपाद ने, हमारे को कुछ हो जाएगा तो वो कृष्ण से जाने, कृष्ण का काम जाने, हमारा काम नहीं है, हम नहीं करते, कृष्ण करता है। आज उधर लिखा है बंसीदास बाबा जी का 13वां भाव तिथि। एक दिन बंसीदास बाबा जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के समय में नवद्वीप में रहते थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने ब्रह्मचारियों को भेजते थे कि बंसीदास बाबा जी सिद्ध महात्मा हैं और उसको भोजन की सामग्री और उनकी सुविधा का सामान दे के आया करो। एक दिन किसी बंगाली स्त्री ने नदी से मछली निकाली और बाबा को कहा, बाबा मछली खाओगे? और बाबा के मन में आया मछली खाना है, और थोड़ी देर के बाद बोला, नहीं खानी है। क्यों? उसको तो भगाया। फिर जाके अंदर भगवान को कहा, मैंने मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित किया है ना, फिर मेरे अंदर यह इच्छा आई क्यों? आप क्या कर रहे थे? प्रभुपाद क्या कहते, अब कृष्ण जाने उसका काम जाने, हमारा झंझट नहीं है। और बंसीदास बाबा ने कहा, और मूर्तियों को उठाया बाहर भगवान जी के, रस्सी में बांधा और गंगा में दे डाला, रस्सी एक हाथ में रख ली। सबने कहा, ये बाबा क्या कर रहे? बोला, इन्होंने मेरे को मछली खाने की इच्छा क्यों करने दी जब मैंने इनका चरण लिया हुआ है। अब तो ये पता भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जब पड़ा, भक्ति सिद्धांत ने अपने ब्रह्मचारियों को कहा, तुम उधर मत जाया करो, केवल एक ही ब्रह्मचारी जाएगा भोजन देने, सामग्री देने। दूसरे दिन का इसलिए मत समझो कि वो माया में, इसलिए कि तुम उसको समझ नहीं पाओगे कि वो किस भाव में पूजा करते थे। नित्यानंद, गौरंगा महाप्रभु, गदाधर और राधा कृष्ण और गोपाल, छह थे, छह ठाकुर जी पूजा करते थे, छह के लिए भोजन की सामग्री ले आते थे और शाम को 3 बजे तक काटते थे, एक बार भोजन का भोग लगाते थे। और एक दिन थोड़ा 9 बजे जल्दी लगाने लगे तो किसी ने पूछा, इतना जल्दी क्यों खिला रहे हो, रोज जल्दी खिलाया करो। बोला कि मैं नौकर हूँ उनका, सारा दिन मैं उनको खिलाने का ही करूँ, और कोई काम नहीं है, अपनी व्यवस्था खुद करें, इतना जल्दी खाना है तो। फिर कहते हैं, गौरंगा महाप्रभु उसके लिए गदाधर बना लेगा, गदाधर क्या है, राधिका है, वो तो गौरंगा महाप्रभु के बना ले जाए। नित्यानंद अवधूत है, वो तो कहीं भी जगह खा के आएगा, उसको चिंता है नहीं। गोपाल हमारे लिए गाय आती है, रोज दूध दे के जाती है, राधा कृष्ण इसके लिए तो मेरे को बनाना ही पड़ेगा। और दो थे पात्र, उसमें भोजन बनाते थे, एक के में गौरंगा महाप्रभु के लिए, एक में नित्यानंद के लिए। और जब जाते थे गंगा स्नान करने तो दरवाजा खुला छोड़ के जाते थे, बोला ताला नहीं लगा के जा रहे हो? बोला लगाया ना ताला, बोला चाबी, बोला तीनों को दे दी ना, जो 3 बच्चे लड़के हैं ना घर में, एक गौरंगा के पास है, एक नित्यानंद के, एक गदाधर के पास है, मालिक तो वो है, चाबी उनके पास है, मैं कहाँ चाबी ले जाऊँगा, अपने घर को वो देखेंगे, मालिक नहीं देखेगा तो मैं क्या करूँगा, उनकी चौकीदारी करूँगा, घर के मालिक तो वो हैं। और वापस आए, भोजन बनाने की तैयारी करते हैं तो 2 बर्तन बड़े कांसे के थे, है नहीं, एक गौरंगा महाप्रभु का और एक नित्यानंद का, बर्तन ही नहीं है। क्यों जी? कहते हैं गौरनिताय को, क्यों जी अपने बर्तन नहीं संभाल सकते हो? नहीं पका के खिलाऊंगा, बैठे रहो भूखे, अपने बर्तन वापस लाओ तो लाओ, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा, और बनाया ही नहीं। शाम तक एक तो वापस बर्तन लेके देके गया छोटा वाला, ठीक है नित्यानंद तुमने अपना बर्तन मंगा लिया, तेरे लिए भोजन बना दो, गौरंगा तुम्हारा भोजन बन। अब नित्यानंद के लिए तो भोजन बना दिया, गौरंगा महाप्रभु का भोजन नहीं बना। दूसरे दिन वो बर्तन दोबारा वापस ला के दिया, बोला ऐसे अपने ध्यान कर, अपनी चीजों का खुद रखो, मैं कहां तक रखूंगा। फिर कहता है, मेरे को माफ करना, मैं बूढ़ा हो गया हूं, इतना काम मेरे से होता नहीं है, अब आप अपनी व्यवस्था खुद किया करो। ये भाव प्रभुपाद देखते हैं, उसकी भगवान चिंता करते हैं, वो भगवान से ऐसे बात करते थे, ऐसे भगवान से रोज का बैठ के बात करो। किसी ने बोला, रोज आके कहता था, भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा। एक दिन पूछा, भगवान कैसे मिलेगा? बोला रोने से, रोने से, रोने से, और कुछ नहीं बोला, बोला रो 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 रो, अगर रोएगे तो भगवान मिलेगा। और ये चेतना महाप्रभु की शिक्षा ही है, वो चेतना महाप्रभु बड़े अनिवार्य थे कि केवल करंदन करने से ही भगवान मिलेंगे। उदाहरण दिया कि बच्चा था छोटा, माँ का घर में पति ने कहा कि मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी भोजन बना दो। माँ बच्चे को छोड़ती है तो बच्चा रोता है, भोजन नहीं बनाती है तो पति का काम नहीं रहता है, क्या करना चाहिए? बड़े बच्चे को बुलाया, तुम बाजार से खिलौना लाओ, खिलौना कौन सा, झुंझुना लाओ। बच्चे को सुलाया, झुंझुना ऊपर बांध दिया, बच्चे झुंझुने को ऐसे मारे, बच्चा झुंझुने में लग गया, माँ भोजन बनाने लगी। 1 घंटे के बाद बच्चे को भूख लगी, बच्चा रोने लगा, माँ ने भोजन पूरा नहीं किया था, काम में लगी रही। थोड़ी देर के बाद फिर वो झूझने में खेलने लगा, फिर भूख लगी, फिर रोने लगा, माँ फिर नहीं आई, फिर झूझने से क्या, फिर झूझने को ऐसे लात मार दी और बहुत चिल्लाया, तब माँ भागती हुई आई। तो कहते हैं बंसीदास बाबा जी, ऐसे इस दुनिया में हम मंदिर में जाते हैं जब हमारे को थोड़ी भूख लगती है भगवान के पास, फिर वापस खिलौनों से जाके खेलते हैं, ये घर हमारा खिलौना है, पत्नी है, बच्चे है, दुकान है, मकान है, ये खेलना है, फिर जाके वहाँ झंझनों से खेलना शुरू कर देते हैं, फिर थोड़ी सी भूख लगती है भगवान के पास आते हैं कि हमारे खिलौने ठीक कर दो। जब तक बिल्कुल खिलौनों को लात मार के अच्छी तरह से चिल्ला चिल्ला के नहीं रोएंगे तब तक भगवान नहीं मिलेगा। ये खिलौनों में कब तक खेलते रहोगे, लाल खिलौने को झंझने को करता करते से टाइम पास नहीं होगा। तो ये बंसीदास बाबा जी जगन्नाथपुरी में बैठे हुए कहते हैं, अगली जन्माष्टमी के आपको तो मैंने दिया था ताल का फल, इस साल आम दूंगा भगवान। अरे आम कहाँ, जन्माष्टमी में आम है कहाँ से आएगा, जन्माष्टमी तक आम बहुत कम हो जाते हैं, तब तो कोल्ड स्टोरेज थे नहीं। एक आदमी 10 मिनट के बाद ब्राह्मण आम लेके आया, बोला मेरे को आपको आम देने के लिए, लगा के मेरे को भगवान ने कहा आम दे के आओ महाराज को। तो ऐसे सिद्ध महात्मा थे, इच्छा भगवान की सेवा की करते थे, चीज़ अपने आप आ जाती थी। और भी अद्भुत उनकी लीलाएं हैं, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसा बहुत बड़ा तर्कवादी जो अच्छी तरह से हर चीज़ को परख सकता है, वो ऐसे महात्मा को बड़े प्रेम के साथ उनकी सेवा करते थे। और उसके ऊपर मेरे ख्याल में भक्ति विकास महाराज ने पूरा पुस्तक लिखा है, बंसीदास बाबा जी। और इस बंसीदास बाबा जी जीवनी से ये बात सिद्ध होती है कि वैष्णव के चरित्र को हम समझ नहीं सकते, लेकिन इस पूरे प्रवचन में एक बात प्रभुपाद की, इनके चरित्र, बोला हमारे को कुछ होगा तो कृष्ण जाने, कृष्ण का काम जाने, हमारा झंझट खत्म, और हम कृष्ण का काम कर रहे हैं भगवद गीता से। और एक बात बड़ी अच्छी प्रभुपाद ने कही जो हमको सीखने के लिए, कि हमारे सारे कामों का एक ही उद्देश्य है कि भगवान कैसे प्रसन्न हो, और भगवान प्रसन्न होने का साधन भगवान ने भगवद गीता में लिखा है कि प्रचार करो, और प्रचार भी भगवद गीता यथारूप को करो, प्रभुपाद जी से लिखा है। प्रचार करने में कष्ट जरूर होता है, जो कष्ट उठाता है वही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। कष्ट उठाने वाला जो रिस्क उठाएगा वही भगवान को बहुत जल्दी भगवान को जान पाएगा। तो ये बंसीदास बाबा जी की जीवनी है। और दूसरा रघुनंदन ठाकुर का आज तिरुभाव तिथि है उनका भी। चैतन्य महाप्रभु के जहाँ भक्तों की शाखाओं का वर्णन है, उसमें आदिलीला के दसम स्कंद में वर्णन है मुकुंददास का। मुकुंददास एक बड़ी शाखा है चैतन्य महाप्रभु की। ये खंड शीरखंड गांव, हाँ, तीन भाई थे, मुकुंदा, माधव और नरहरि। ये तीनों प्रिय थे बहुत महाप्रभु को। नरहरि तो उनमें से वो है जो जो लोचनदास के गुरु हुए बाद में, और मुकुंददास वो है जिनको एक बेटा था, उसका नाम था रघुनंदन ठाकुर। किसका बेटा था? मुकुंददास डॉक्टर था, फिजिशियन था, और राजा का, और राजा मुस्लिम था, उसका फिजिशियन था, उसका बेटा ये था। इस प्रसंग में एक बात चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से मिलती है कि ज्वाइंट फैमिली, संगठित परिवार कैसे भगवान को संतुष्ट कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुकुंदा तुम पैसे कमाओ, तुम क्या करो, पैसे कमाओ। नरहरि तुम मेरे पास रहो, प्रचार करो, और रघुनंदन तुम ठाकुर जी की पूजा करो। अब एक कमा रहा है, एक प्रचार कर रहा है, एक ठाकुर जी की पूजा कर रहा है। अब तीन आदमी है, तब एक कमा के दो का काम चला रहा है ना। तो जब परिवार संगठित होंगे, साथ होंगे, तो कोई आदमी एक भगवान की पूजा करेगा तो हजारों का उद्धार कर सकता है, पूरे परिवार का उद्धार कर सकता है। तो रघुनंदन जी के जीवन में एक विशेष घटना यह हुई कि अभी छोटे 5 साल के बच्चे थे, मुकुंद जी को कहीं जाना पड़ा बाहर, और जब जा रहे थे तो छोटे बच्चे को कहा, अपने घर में गोपीनाथ है ना, उसको भोग लगाते हैं, आप उसको भोग जरूर लगाना, अच्छी तरह से देखना भगवान को, ठीक तरह से नेम से भोग लगना चाहिए बेटा, इस बात का ध्यान रखना। मुकुंदा तो चले गए अपनी सेवा में कहीं बाहर, और रघुनंदन ने थाली के ऊपर मां ने बना के दिया प्रसाद की थाली, ठाकुर जी के सामने रख के गोपीनाथ को कहते अब खाओ, पापा खिलाते हैं खाते हो, हम नहीं खिलाते, हम खिलाते हैं खाते नहीं, ऐसे ही पड़ा है, क्या बात है, खाना पड़ेगा। और इतना आग्रह किया कि गोपीनाथ सब कुछ पा लिया। वापस आके मुकुंद कहता बेटा भगवान को भोग लगा दिया, बोला हाँ बाबा, बोला प्रसाद लाओ, बोला प्रसाद कहां से, वो तो खा गया, हम तो यहां 12:30 के बाद सब किचन के पीछे लाइन में खड़े होते हैं, प्रसाद मेरी प्लेट कहां, अरे खा गए भैया तुम्हारी प्लेट, इसका मतलब हमारी नियत होता है कि भगवान खाएगा नहीं, हमको वापस मिलेगा। हमको तो कहना चाहिए भैया सब खा गया। और रघुनंदन का मुकुंद ने बोला मेरा बच्चा तो ईमानदार है, ये तो झूठ बोलने वाला नहीं है, ऐसे कैसे कह रहे, इतना ये भी तो नहीं खा सकता है, हुआ क्या है? बोला कुछ नहीं, बोला बेटा आज मेरे को काम है, मैं जा रहा हूं, तुम भगवान को भोग लगा देना। इसने अच्छा है मेरे को भगवान की सेवा मिल गई। वो मुकुंद जाके वापस आया और छुप के खड़ा हो गया, ये तो ले जाके भोग भगवान के सामने रखा और प्रार्थना की, लड्डू उठाया गोपीनाथ ने खाने लगा, आधा खाया तो मुकुंद ने खिड़की से देखने लगा, जैसे खिड़की से देखा खाना बंद कर दिया। मुकुंद ने यह देख तो लिया कि भगवान भोजन कर रहे हैं मेरे बेटे के कहने के ऊपर, लेकिन मैंने देखा है तो खाना बंद कर दिया। अभी भी वो शीरखंड गांव में गोपीनाथ के हाथ में आधा लड्डू पड़ा हुआ है, ऐसे आज जाके देखेंगे तो आधा लड्डू आधा खाया हुआ अभी भी वहां पड़ा है। कटवा से 3-4 किलोमीटर दूरी के ऊपर वो स्थान है जहां ठाकुर जी की पूजा किए करते थे, वो आधा लड्डू उनके हाथ में पड़ा है। अब मुकुंदा को आनंद में विभोर हो गए, आंखों से आंसू आया, अपने बेटे को गोद में ले लिया, कहा मेरी पूजा से तो भगवान संतुष्ट हुआ नहीं, बेटा आपकी पूजा से इतना संतुष्ट हुआ। और मुकुंदा जब गया जगन्नाथपुरी में, ये बात भी एक बड़ी अच्छी मिलती है चैतन्य चरितमृत से, चैतन्य महाप्रभु के सारे पार्षद बंगाल से 4 महीने के लिए जाते थे जगन्नाथपुरी में चतुर्मास में। 4 महीने में पहले भारत में कोई काम नहीं करता था, सब बैठ के भगवान की कथा कीर्तन और भजन करते थे। 4 महीने उनके पास समय होता था कि जाके भगवान का भजन करें, दुकान धंधा बंद, ताला सबको लगा देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था और सारे सुखी थे, वो कुत्तों को भी खिलाते थे, उनका भी किराया भरते थे, हैं या उनको पास कोई चिंता नहीं थी। 4 महीना ये कार्तिक, अभी 4 महीना चतुर्मास का शुरू हुआ, जन्माष्टमी आने वाली है, अधिक से अधिक भगवान की कथा और भगवान के नाम का जप करके भगवान को अर्पण करने का प्रयास करो। जब चैतन्य महाप्रभु सब बंगाल से आए भक्तों को विदा कर रहे थे जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद, तब मुकुंदा को बुलाया, बोला मुकुंदा की महिमा कोई नहीं जानेगा, मुकुंदा की महिमा जानना बहुत मुश्किल है। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते मुकुंदा रघुनंदन तुम्हारा बेटा है कि तुम रघुमत नंदन के बेटे हो, अब में से बाप कौन है बेटा कौन है ये बताओ। मुकुंद हाथ जोड़ के कहता है रघुनंदन बाप है और मैं बेटा हूं। महाप्रभु कहते बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि उसकी कृपा से कृष्ण प्रेम आपको प्राप्त हुआ, तो जिसकी कृपा से कृष्ण प्राप्त प्रेम प्राप्त होता है वो गुरु होता है और गुरु पिता समान होता है, तो अपने बेटे को रघुनंदन को मुकुंद कहते हैं मेरे पिता है, इसकी कृपा से हमारे परिवार को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई है, भगवान की संतुष्टि की प्राप्ति हुई है। तो ये चैतन्य महाप्रभु फिर मुकुंद की महिमा बताते हैं कि ऐसे महात्मा ये भगवान के परम भक्त है कि राजा को हवा करने के लिए कोई पंखा लाया और पंखा मोर पंख का था, उसको देख के आनंद में विभोर होके मुकुंदा को तो दिखाई दिया कृष्ण मोर पंख वाला है और तो कोई है नहीं, तो राजा बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा खासा डॉक्टर आया मेरे इलाज करने और बेहोश खुद हो गया, ये तो बड़ा आश्चर्य है। तो जब ठीक हुआ तो पूछा कि आपको हुआ क्या, बोला नहीं नहीं मुझे मृग ही की बीमारी है, मेरे को ऐसे माइग्रेन होता है, अरे मैं जानता हूं अच्छी तरह से आप ठीक ठाक हो लेकिन उसके सामने अपना भाव दिखाया नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते इतने वैष्णव को जानना बहुत मुश्किल, और तब उसके बाद कहा आप जाके पैसा कमाओ, डॉक्टरी करो, धंधा करो। तुम्हारे इस काम से भगवान की संतुष्टि हो जाएगी। तुम्हारे बेटे को भगवान की पूजा करने में लगा दो, पुजारी बना दो, और नरहरि को मेरे पास छोड़ के जाओ, यहाँ प्रचार के काम में काम करेगा। तो एक परिवार के तीन व्यक्ति को तीन अलग अलग काम चेतना महाप्रभु ने दिए, और तीनों कामों से तीनों ने चेतना महाप्रभु को संतुष्ट किया। रघुनंदन का बेटा कन्हई ठाकुर, तो ये उसके फिर परंपरा में अभी 400 से ज़्यादा उस कुल में अभी भी उस गांव में लोग रह रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन सब का वर्णन भी किया है। तो इन दो महान आचार्यों का, दो महान भगवान के वैष्णव महाप्रभु के परिकरों का आज तिरुभाव तिथि है। और ये जो रघुनंदन जी थे, ये कंदरप, कंदरप का मतलब कामदेव, तो कंदरप मंजरी के रूप में भी थे, और द्वारका लीला में कंदरप के रूप में भी आए थे। कंदरप कहते हैं, प्रद्युम्न कंदरप है वैसे तो। ये इनका आध्यात्मिक जगत की पहचान है। तो प्रेम से भगवान को उन्होंने भोजन कराया था। इन दोनों की जीवनी ये है। अब 5 मिनट के लिए आप प्रभुपाद जी के इस लेक्चर को जो सुना है, इसमें कोई आप सब में से कोई शेयर करना चाहता है कि कोई चीज़ जो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिकल लगी कि आपके जीवन में आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं ऐसे, अथवा इन दो के विषय में, महात्माओं के विषय में कुछ, किसी के बंसीदास के विषय में और भी बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आप ऐड करना चाहते हो। यस प्रभु, कोई कुछ प्रभुपाद जी के लेक्चर में से अथवा इन दो महात्माओं के विषय में किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ कहना चाहे, कुछ जिज्ञासा। हाँ जी, कोई भी काम करने से पहले ये अपने आप से पूछ लो कि इस काम करने से गुरुजी प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं है। अंदर से आप जवाब आ जाएगा हाँ या ना। हर काम करने से ये पहले ये करके देख लो। कोई भी काम शुरू करो, क्या ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरे संसार की दृष्टि से पहले मेरे बड़े बुजुर्ग प्रसन्न होंगे, गुरुजी प्रसन्न होगा, भगवान प्रसन्न होंगे। अगर अंदर से हाँ जवाब आए तो ठीक है, ना आए तो मत करो। आप देखेंगे बहुत से काम हम पूछना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें मालूम है ना जवाब आएगा, और करना चाहते हैं, ये हमारी बीमारी। हमें मालूम है सही काम क्या है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जानते हुए भी गलत काम है फिर भी करते, ये हमारी कमजोरी है। क्योंकि हमने भगवान की शरणागति में अभी हम पूर्ण रूप से, भगवान ही हमारी देखभाल करेंगे ये विश्वास हमको अभी तक हुआ नहीं है। ये हमारी समस्या। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कुछ जिज्ञासा आई, कुछ जिज्ञासा मतलब कोई विशेष प्रभुपाद के प्रवचन से कोई विशेष बात किसी ने ऐसी ग्रहण की हो जो शेयर करना चाहता है। हाँ बोलिए सालंगराम। रिस्क लेने से हम घबराते क्यों हैं? क्योंकि भौतिक जगत में बहुत रिस्क लेके धोखा खाया है। हम समझते हैं भगवान भी हमको धोखा देगा। भौतिक जगत में हमने बहुत से रिस्क लिए हैं और बहुत बार धोखे खाया है, इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास करने में हमारे को पूर्ण संतुष्टि नहीं है। लेकिन भगवान का नाम अच्युत है, जो कभी भी चूकता नहीं है अपने भक्त की रक्षा करने में। एक बार उसके ऊपर विश्वास करके देखो, उसके लिए रिस्क खा के देखो और रिस्क उठा के देखो, फिर देखो कि आपके हर समस्या का समाधान और हर मुश्किल में आपकी सहायता करता है कि नहीं करता है। लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस भौतिक जगत का भगवान के साथ जोड़ते हैं, ये हमारी गलती है। दोनों का बिल्कुल अलग नापदंड है, आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों का नापदंड बहुत अलग है, और हम दोनों का तुलना करते हैं इसलिए हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। हम अपने जीवन की घटनाओं से भगवान के साथ भी उसी घटना से देखने का प्रयास करते हैं, ये हमारी गलती है। भगवान के लिए रिस्क खाना, प्रचार करना सबसे बड़ी रिस्क है। और प्रभुपाद जी कहते हैं हजरत ईसा को फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया, हरिदास ठाकुर को प्रचार करते हुए ठाकुर को 22 चौराहों के ऊपर एक कोड़े लगे। तो ऐसे नहीं है कि प्रचार करने वालों को कष्ट नहीं होता है। इस्कान के बहुत से भक्त पुस्तक वितरण करते हुए जेलों के अंदर गए हैं, उनको ले गए हैं, ये कहीं कष्ट नहीं उठाया है। लोगों ने ऐसी ऐसी जगह पे गए थे, उस वक्त में साउथ अफ्रीका में जाना बहुत मना था और अमेरिकन लोग जा सकते थे, कैसे छुप छुप के उन्होंने वहाँ प्रचार किया था। उस जमाने में साउथ अफ्रीका की एम्बेसी भी नहीं थी, कहीं और से कैसे प्रचार किया, तो बहुत बड़ा रिस्क उठाया। रशिया के अंदर कैसे भक्त जाके प्रचार करते थे और चाइना के अंदर कैसे भक्त गए, तो बहुत बड़ा रिस्क उठाया है भक्तों ने। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमारी कृष्ण भावना चारों ओर से अपने आप फैल रही है, क्योंकि कृष्ण सब चीज़ों का व्यवस्था अपने आप कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसी आज के प्रवचन में ये शब्द कहे कि क्योंकि हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए रिस्क उठाना चाहते हैं तो कृष्ण सारी व्यवस्था पहले ही कर देते हैं। जैसे अर्जुन को कह दिया कि निमित्त मात्र भव सवे साचन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो, काम मैंने पहले ही कर दिया। तो असल में रिस्क उठाई है भक्तों ने बहुत बड़ी। और ऐसे भी माना जा सकता है एक दृष्टि से, उन्होंने रिस्क इसलिए उठाई कि उनके पास कुछ था ही नहीं, रिस्क ही उठाना उसके लिए था। अब हमारे पास अच्छे बने बड़े मंदिर और टाइम से प्रसाद तैयार है, इसलिए हम बाहर निकल के रिस्क उठाने को तैयार नहीं। उनके पास सुविधा थी ही नहीं, तो वैसे घर में ही रिस्क, बाहर ही रिस्क, तो बाहर रिस्क उठाना अच्छा है। लेकिन हमारे पास इतनी सुविधाएं बढ़ गई है कि अब हम रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं। प्रभुपाद ने कितनी रिस्क उठाई, गर्मी मई जून की में चांदनी चौक और इस खारी बावड़ी की एरिया में पैदल चलते चलते गर्मी में बेहोश हो गए किताबों की छपाई के बीच में, कुछ था नहीं, टांगे में चढ़कर वृंदावन से कोसी तक आके ट्रेन पकड़ा करते थे। अब तो टांगे में चढ़ने का सोच भी नहीं सकते हैं आप लोग, कितनी हमारे पास सुविधाएं हैं। उन्होंने कितनी रिस्क उठाई हर समय, अथवा उनके भक्तों ने कितनी रिस्क उठाई है उनके जीवन से देख लो। तो अभी जब तक रिस्क उठाने का काम नहीं करेंगे तब तक प्रचार में भगवान की प्रसन्नता का लिए रिस्क उठाना बहुत जरूरी। अब कैसे रिस्क उठाएंगे, लेकिन सबको कहना है कि आप बड़े बुद्धिमान हो, बड़े विद्वान हो, आप बड़े सुंदर हो, चाहे वो नहीं भी हुए ये भी रिस्क उठाना है। लेकिन आप हरे कृष्ण जप लो, चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद ने क्या, चैतन्य महाप्रभु का मतलब कृष्ण भावना। ये एक इसका मतलब क्या हुआ, कृष्ण भावना भावित हर एक व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु के विषय में आना चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ। तो हम कृष्ण भावना भावित हैं, इसका मतलब हमको कम से कम चैतन्य महाप्रभु टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं अच्छी तरह से जीवन में पढ़ के समझ लेनी चाहिए। कृष्ण भावना और चैतन्य महाप्रभु को प्रभुपाद ने इसमें तुल्य बताया, सेम। इसका मतलब है कृष्ण, बहुत सारे कृष्ण भक्त 15-20 साल से हैं लेकिन चैतन्य चरितमृत तथा चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को नहीं पढ़े अभी तक, बहुत से लोग ऐसे हैं। ये सत्य है कि झूठ बोल रहा हूं? और चैतन्य चरित्र पढ़ना शुरू करोगे तो उसको छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन उसके लिए जब तैयार होगे तब पढ़ पाओगे। चैतन्य प्रभुपाद का 3 पुस्तक हमेशा साथ होनी चाहिए प्रचार में जाओ तो, भगवद्गीता यथारूप, पहला स्कंद श्रीमद् भागवतम और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, ये 3 पुस्तक हर वक्त साथ होने चाहिए। ये नहीं है इसका मतलब आप लड़ाई के मैदान में बगैर हथियार के जा रहे हो, ये 3 हैं तो आप संपूर्ण रूप से भौतिक जगत में माया के साथ युद्ध करने में समर्थ हो। तो ये 3 पुस्तक हमको ठीक तरह से पढ़नी चाहिए, और पढ़ने से क्योंकि हम याद नहीं कर पाते इसलिए 3 साथ रखनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और आसान कर दिया है, 3 आप छोटे डब्बे में डाल सकते हैं, लेकिन अपने साथ रखनी चाहिए, सुननी चाहिए। हरे कृष्ण बोलो प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु के लिए क्यों कहा है, भगवद गीता पढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा ऐसे? इस प्रवचन में उन्होंने कहा, क्योंकि वो उस वक्त प्रभुपाद जी प्रबोधानंद सरस्वती के श्लोक के ऊपर प्रवचन कर रहे थे, तो जिसका कोट कर रहे हो उससे उसके साथ आपको ईमानदारी से जताने के लिए उन्होंने लिखा है चेतना महाप्रभु, इसलिए उनको चेतना महाप्रभु उनकी शिक्षाओं प्रबोधानंद सरस्वती की बात को सिखा एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसके अंदर अपनी तरफ से कुछ डालना ये शास्त्र के ऊपर अर्थवाद हो जाएगा। ये एक सिद्धांत बता रहे हैं और ये हमको बहुत शिक्षा अच्छी मिल रही है, कभी हम शास्त्र को तोड़ मोड़ के लोगों को प्रसन्न करने के लिए कहने का प्रयास करते हैं। और प्रभुपाद जी इस उदाहरण से बता रहे हैं, अगर प्रबोधानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं तो उसने जो कहा है उसको वैसे का वैसे कहना चाहिए। और इसी को लेकर प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए मैं लोगों को बदमाश कह सकता हूँ क्योंकि मैं नहीं कहता हूँ, कृष्ण कहते हैं और मैं भगवद गीता से कहता हूँ, भगवान कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो भगवान की बात बता रहा हूँ। तो ये बात इससे सिद्धांत से ये क्योंकि प्रभुपाद इस वक्त प्रबोधानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने लिखा है चेतना महाप्रभु को, तो उन्होंने चेतना महाप्रभु कहा उनकी शिक्षाओं को हमको समझाने के लिए। तो ये उनसे सीखने की बात है कि जिसकी बात कोट करो तो उसकी बात पूरी काट करो, अर्ध कुकटी न्याय नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कहो और जो अच्छा लगे वो नहीं कहो। अंडा देती है कुर्द पिछले का ऐसा रखेंगे और आगे का गर्दन काट देंगे, अन्न खाती है, ऐसा करने से दोनों आते जाएंगे। तो इससे सिर्फ इसमें यही दिखता है और कोई कारण नहीं। इसमें प्रभुपाद के सिद्धांत और सदाचार दिखता है कि आचार्यों को कोट करते हुए कैसे वो सावधान है। प्रबोधानंद सरस्वती को अपने गोपाल भट्ट का पिता कहा है, ये असल में चाचा थे, ये प्रवचन में कभी ऐसे हो जाता है डबल, प्रबोधानंद वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद सेम पर्सन नहीं है, लेकिन यहाँ प्रवचन में ऐसे आया है क्योंकि बोलते हुए कभी शब्द आगे पीछे होते हैं, तो वेंकट भट्ट उनके पिताजी का नाम है और प्रबोधानंद सरस्वती उनके चाचा थे, और गोपाल भट्ट उनके चाचा के पास बहुत रहे थे प्रबोधानंद सरस्वती का। हाँ नेफी बोला है तो फिर तो ठीक है, एक जगह मैं ऐसे देखा मेरे को। हाँ हाँ बाद में बोला तो पहले एक बार ऐसे शब्द आया है। हाँ तो वो मैं कहता हूँ कभी बोलने में ऐसे होता है, तो इसलिए इसको अगर मानो किसी को क्लियरेंस इसका ऐसा है। और किसी का कोई प्रभुपाद की शिक्षाओं से विशेष आज के प्रवचन से कोई, तो रिस्क लेने के लिए कौन तैयार है, कैसे रिस्क लेंगे? आजकल कॉलेजों में प्रचार करना बहुत बड़ी रिस्क है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क का काम करना पड़ता है, ये जो वक्त काम कर रहे हैं ये बड़ा रिस्क है अपने आप में। फिर भी अभी भी हफ्ते में एक दिन आप कहीं ना कहीं किसी गांव में जाके अपना प्रचार करने का, अपने बलबोते पे दो भक्त जाके प्रचार करना शुरू करो, तब आपको पता लगेगा कि कितना चेतना महाप्रभु की कृपा आपके पीछे कितना काम करती है, कैसे सब लोग पहले से तैयार है आपके जाने की जरूरत है। ऐसे वंस ए वीक अथवा वंस ए फोर्टनाइट अपना एडवेंचर करके किसी न किसी गाँव में दो भक्तों को जाना चाहिए, आँखें बंद करके कहीं नहीं जाते, जाओ करताल उठाओ, कीर्तन शुरू करो और प्रवचन देना शुरू करो, देखो कैसे लोग भगवान कैसे महाप्रभु अपने जो जो जिज्ञासु उनको भेज देगा, ये अनुभव करके देखो, बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन जो पक्के है वो जाए, ऐसे नहीं वहाँ जाने के बाद वापस ही नहीं आए। रिस्क उठाने का मतलब हम नहीं रिस्क उठाना चाहते आपके। श्री प्रभुपाद की, बंसीदास बाबाजी महाराज की, रघुनंदन ठाकुर की।